Welcome friends to Literature Mantra, I'm Harsh Singh and in this audio we'll discuss Elizabethan era. Now before going through the important writers of the Elizabethan era, it is always a good idea to go through the historical context. What were the important events that were taking place and in general what was the historical context? Okay, because it always helps us contextualize the literary works that were written. In addition to that, it also helps us to understand why literature of a particular kind was produced in the Elizabethan era rather than of some other kind. Okay? So if you haven't gone through the historical context, definitely go through it. Okay? And for the purposes of this lecture, we will focus on the important writers and their important literary works. Okay? Now, usse pehle hame timeline yaad rakhna chahiye, that what was the timeline of the Elizabethan era. Okay? Now, broadly speaking, it begins with the ascent of Queen Elizabeth, which happens in the year 1558. Okay? And it goes on till 1603. Okay? 1603 tak. So from 1558 to 1603 is the Elizabethan era. Now, as I always say, it is always helpful to create a kind of timeline in your mind. Okay? It will just help you to visualize what was going on. Okay? Now, let's begin with poetry. Okay? Now, the most important writer in poetry is Philip Sidney and Edmund Spenser. Okay? Let's take up Philip Sidney first. What are the important works written by Philip Sidney? Now the first important work is Arcadia. Okay, A-R-C-A-D-I-A. Arcadia. Uske baad Astrophil and Stella. Okay, these two are important works. Uske baad inka ek literary criticism pe bhi hai, which is called the Defense of Poesy. Okay, the Defense of Poesy. So when we study literary criticism, we also study the Defense of Poesy by Philip Sidney. So what is Arcadia about? Arcadia kya cheez hai? Now first of all, you should know the full title of this work. ठीक है, टाइटल पूरा क्या है इसका? The Countess of Pembroke's Arcadia. ठीक है, The Countess of Pembroke's Arcadia. And in short, we say Arcadia. ठीक है, This is a work in prose. ठीक है, A very long work of prose and a pastoral romance. ठीक है, Pastoral romance है ये, written in prose. And when Philip Sidney wrote this work, ठीक है, First version उन्होंने publish किया था, and later on he revised the version and expanded the version. So there are two versions. One is called the Old Arcadia, जो पहले लिखी गई थी, and then we have the New Arcadia. ठीक है, Both of them have been written by Philip Sidney. बस फर्क ये है कि that later on the later version is the expanded version and the changed or the revised version. और इसकी जो story है, it takes place in a province called Arcadia. ठीक है, It is in ancient Greece. ठीक है, The setting ये है, setting in ancient Greece in a province called Arcadia. उसी के ऊपर ये नाम है, Arcadia. Now after that, the next important work by Philip Sidney is Astrophil and Stella. ठीक है, Astrophil and Stella. Now this is a sonnet sequence. ठीक है, ये sonnet sequence है and it has 108 sonnets. ठीक है, कई बार exam में पूछ देते हैं that you know how many sonnets are there in this sonnet sequence. There are 108. ठीक है, And one more thing, what is a sonnet? A poem of 14 lines. ठीक है, 14. Now after that, let's come to the defense of poesy. Broadly speaking, किस चीज के बारे में है ये? See, as the name indicates, it is a defense of poetry. ठीक है, Because in the times of Philip Sidney, ठीक है, There was a person called Stephen Gosson. ठीक है, Stephen Gosson एक आदमी का नाम है, who attacked poetry as being immoral, useless, and you know he gave all the negative arguments. So to counter that, Philip Sidney wrote this piece, ठीक है, The Defense of Poesy, in which he highlights the value of poetry, the use of poetry, and he also states that you know out of all the other disciplines, let's say history or philosophy, poetry is superior. ठीक है, So Philip Sidney के ये तीन works का नाम याद रखना, Arcadia, Astrophil and Stella, and The Defense of Poesy. Now one more thing you should remember, what is the basic storyline of Astrophil and Stella? इसमें होता क्या है? See, as I said, this is a sonnet sequence, ठीक है? And this sonnet cycle or sonnet sequence tells the story of a lady love called Stella, which literally means star, ठीक है? And the gentleman is called Astrophil, or star lover, literal मतलब होता है इसका. Now, Astrophil loves Stella, but at the same time, he also loves poetry, ठीक है? As much as he loves her. In these sonnet sequences, Astrophil details his feelings for Stella, ठीक है? His struggles with, you know, conflicting emotions. And then he finally decides to abandon his pursuit of the lady love in favor of a life which is committed to public service. ठीक है? So it is not just a kind of any romance. It is courtly romance. ठीक है, इट ऑनर्स द पोएटिक कन्वेंशंस ऑफ दोज टाइम्स. ठीक है, दिस इज द ब्रॉड स्टोरी लाइन ऑफ दिस. नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू एडमुंड स्पेंसर. सी, एडमुंड स्पेंसर इज फेमस फॉर द फेरी क्वीन, ठीक है, द फेमस वर्क. उसके बाद ही हैज ऑल्सो रिटन अ वर्क कॉल्ड एमोरेटी, देन शेफर्ड्स कैलेंडर एंड ऑल्सो एपिथलामियन. ठीक है, नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू फेरी क्वीन एंड अदर्स, लेट मी पॉइंट आउट दैट एमोरेटी, ठीक है, विच हैज बीन रिटन बाय एडमुंड स्पेंसर, ये भी एक सोनेट साइकिल है और सोनेट सीक्वेंस है. ठीक है, एंड दिस सोनेट साइकिल और सोनेट सीक्वेंस हैज 89 सोनेट्स. ठीक है, द वे फिलिप सिडनी हैज रिटन अ सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफेल इन स्टेला, सिमिलरली एडमुंड स्पेंसर हैज रिटन दिस एमोरेटी. ठीक है, एंड दिस वन हैज 89 सोनेट्स. कई बार एग्जाम में आ जाता है, यू नो दैट हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर इन एमोरेटी एंड वॉट इज द स्टोरी लाइन ऑफ दिस. Now, in the sonnets that have been included in this volume, theek hai, Spenser describes his courtship and eventual marriage to his wife. And the name of his wife was Elizabeth Boyle. Theek hai? Elizabeth Boyle was the name. So, wahi pyar mohabbat ke baare mein ye sari cheezein likhi hui hain. Theek hai? So, in the sonnets which are included in Amoretti, Spenser immortalizes the name of his bride, of his wife. ठीक है, सो ही क्रॉनिकल्स द प्रोग्रेस ऑफ हिज लव, ठीक है, बिफोर मैरिज, देन फाइनली मैरिज, एंड ही ऑल्सो राइट्स अबाउट ब्रेकअप विद हिज वाइफ. सारे चीजों को इन्होंने लिखा है. नाउ वन मोर फैक्ट, लेट मी टेल यू दैट देयर वाज फ्रेंडशिप बिटवीन एडमुंड स्पेंसर एंड फिलिप सिडनी. ठीक है, दोनों दोस्त थे. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी, एडमुंड स्पेंसर रोट अ एलेजी. दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन द एग्जाम व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एलेजी. सो व्हाट वाज द नेम? द नेम वाज एस्ट्रोफिल. ठीक है, दिस वाज अ एलेजी रिटन बाय एडमुंड स्पेंसर on the death of his friend Philip Sidney in the year 1586. ठीक है, ये एक फैक्ट है. और एस्ट्रोफिल इसका टाइटल क्यों पड़ा? बिकॉज यू नो ऑलरेडी फिलिप सिडनी वॉज वेरी फेमस फॉर हिज वर्क एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. ठीक है, सो जस्ट टू ऑनर हिम, इसलिए ये एलेजी का भी नाम इन्होंने, एडमुंड स्पेंसर ने दिया, एस्ट्रोफिल. नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू द फेरी क्वीन. नाउ एडमुंड स्पेंसर इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर दिस वर्क. ठीक है, इट इज एपिक इन नेचर. ठीक है, एपिक लेंथ का, इट्स वेरी लॉन्ग, अ वेरी लॉन्ग पोएम ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस. ठीक है, बट वन फैक्ट यू शुड रिमेंबर इज दैट इट इज इनकम्प्लीट. There are only 11 parts to it, but originally the plan was to write 12 parts. ठीक है, सो दिस इज अनफिनिश्ड. और फेरी क्वीन किस चीज के बारे में है? यू नो इट जस्ट डिटेल्स द एडवेंचर्स ऑफ सम नाइट्स. ठीक है, नाइट्स अंडर किंग आर्थर. ठीक है, एंड एवरी बुक, ठीक है, इट हैज 11 बुक्स. एवरी बुक रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्च्यू. ठीक है, अब चाहे वो जस्टिस हो, फ्रेंडशिप हो, होलीनेस और टेम्परेंस और चैस्टिटी और कर्टसी, ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज होते हैं, दोज नाइट्स रिप्रेजेंट दीज क्वालिटीज. ठीक है, सो अलॉन्ग विद अ लिटरल मीनिंग, जो कि है ही इसका लिटरल मीनिंग, तो देर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एलिगोरिकल मीनिंग. एंड दिस इज अ एलिगोरिकल वर्क इन प्रेज ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट. ठीक है, हु वॉज द क्वीन एट दैट टाइम. ठीक है, दैट्स वाई यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिजाबेथन इरा, बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ वॉज द क्वीन. सो इन द फेरी क्वीन, एडमुंड स्पेंसर प्रेजेज द ग्रैंडियर ऑफ Elizabeth the First, ठीक है, एंड शी इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ग्लोरियाना. ठीक है, GLORIANA, ग्लोरियाना. ग्लोरियाना इज बेसिकली यू नो द नेम ऑफ Elizabeth the First, एंड ऑल ऑफ दीज नाइट्स, ठीक है, सर्व द फेरी क्वीन और द क्वीन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्लोरियाना, और जिनका नाम ग्लोरी है. ठीक है, ऑल ऑफ दीज नाइट्स सर्व हर. एंड वन मोर फैक्ट यू शुड नो अबाउट द फेरी क्वीन इज दैट इन दिस पोएम एडमुंड स्पेंसर यूजेज द स्पेंसेरियन स्टैंजा. सो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं दैट यू नो व्हाट इज द स्टैंजाइक पैटर्न ऑफ अ स्पेंसेरियन स्टैंजा एंड व्हाट इज द राइमिंग स्कीम. सी, स्पेंसेरियन स्टैंजा में 8 लाइंस प्लस 1 लाइन, सो कुल मिला के 9 लाइंस होते हैं. द फर्स्ट 8 लाइंस हैव 10 सिलेबल्स ईच एंड द 9th लाइन हैज 12 सिलेबल्स. ठीक है, और राइमिंग स्कीम क्या है ये आपको याद रखना चाहिए. इट इज ए बी ए बी, देन बी सी बी सी, एंड फाइनली वी हैव सी. ठीक है, सो लेट मी रिपीट दैट वंस मोर. ए बी ए बी, बी सी बी सी, एंड देन सी. ठीक है, ये है राइमिंग स्कीम. नाउ उसके बाद आपको एक और फैक्ट याद रखना चाहिए दैट इन दिस पोएम द फेरी क्वीन, डू वी हैव द कैरेक्टर ऑफ किंग आर्थर और नॉट? द आंसर इज येस. ठीक है, बट एट दैट टाइम व्हेन दिस पोएम इज सेट, किंग आर्थर इज जस्ट अ प्रिंस. ठीक है, सो ही विल बिकम किंग लेटर ऑन. इन द पोएम ही इज जस्ट अ यंग एडवेंचरिंग नाइट. ठीक है, वो नाइट है, एक प्रिंस है. Now, after the Fairy Queen, let's move on to the next work, the Shepherd's Calendar. Okay, the Shepherd's Calendar. Now, keep in mind that I am telling you about these works because these are very important from an exam point of view. Okay, that is why I am trying to give you as many important details as possible. So, definitely note it down. Don't think that these are too many details or it's a waste of time. No, it's not a waste of time. These details are important. Okay? So let's move on to the Shepherd's Calendar. Ye kis cheez ke bare mein hai? First of all, it is a series of poems. Of course, written by Edmund Spenser. Now, the Shepherd's Calendar has 12 eclogues. Okay? E-C-L-O-G-U-E-S. Eclogue. Now, eclogue kya hota hai? It's a kind of short pastoral poem. Okay? Kind of poem hai. Use kehte hain. So, there are 12 such poems. After that, there is a shepherd boy called Colin Clout. Okay? Colin Clout. C-O-L-I-N, Colin, C-L-O-U-T, Clout. And Colin Clout, this character represents Spencer himself. Okay? Uske baad, what are these different eclogues about? Kis cheez ke baare mein hai ye? Now, each eclogue is for one particular month of the year. For example, January, February, March, April, and so on. Okay? Now, after that, you should be aware of what exactly is a eclogue. I told you it is a short pastoral poem. Aur kya hota hai eclogue mein? See, it is just about simple shepherds. Okay? They discuss matters related to life and love. Okay? Sometimes their arguments are pretty good. Sometimes their arguments are satirical. And they present their opinions. Opinions on, you know, various questions that are there about life and the world. Or those things that are ongoing in their society. Un sab cheezon pe opinions hain. By these simple shepherds. Seemingly, you know, innocent and simple shepherds. Use kehte hain eclogue. Theek hai? E-C-L-O-G-U-E-S. Eclogue. And this is what the Shepherd's Calendar is about. Theek hai? There are 12 eclogues. One for each month. One dedicated to each month. Now, after that, let's move on to the next work of Edmund Spenser, which is Epithalamion. Theek hai? Now, before I explain to you what is Epithalamion, what is the meaning of Epithalamium. ठीक है English में English dictionary में एक word होता है Epithalamium. Spelling is slightly different. ठीक है Now the meaning of Epithalamium is a song or a poem which celebrates a marriage. ये मतलब होता है literal मतलब है ये. ठीक है And the spelling is E-P-I-T-H-A-L-A-M-I-U-M. ठीक है ये होता है dictionary meaning. Now coming to the work of Edmund Spenser. His work is called Epithalamion. ठीक है E-P-I-T-H A-L-A-M-I-O-N. Ye difference hai spelling mein. But the purpose for which Edmund Spenser wrote this was the same. Celebration of his marriage to his wife, Elizabeth Boyle. ठीक है सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ओड ओ डी ई ओड ठीक है एंड ओरिजिनली इट वॉज पब्लिश अलॉन्ग साइड एमोरेटी ठीक है एज आई टोल्ड यू अबाउट एमोरेटी दैट स्पेंसर टॉक्स अबाउट हिज कोर्टशिप एंड लव एंड फाइनली मैरिज विद एलिजाबेथ बॉयल एपिथलामियन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ दैट मैरिज ओरिजिनली दे वर पब्लिश टूगेदर एमोरेटी एंड एपिथलामियन ठीक है एंड एपिथलामियन इज इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम ठीक है और इसके कितने स्टैंजाज हैं 24 स्टैंजाज ठीक है 24 स्टैंजाज आर देयर एंड एज अ नो ट्रेडिशनल पोएम ऑफ दोज डेज इट बिगिन्स विद द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूजेस ठीक है नो जस्ट एज वी हैव इन पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन देयर इज द इन्वोकेशन टू द म्यूज और इन होमर इलियड एंड सो ऑन Even here, okay, there is the invocation of the muses at the very beginning, okay, starting mein hi hai. And in this poem, what the speaker does, okay, and the speaker is of course, you know, Edmund Spenser. He reflects on the private moments of bride and groom, okay, newly married couple. And he also offers a prayer for the fruitfulness of the marriage. And by fruitfulness, I mean that God bestow them with children, okay. So this is what Epithalamion is about, okay. So as a quick recap. Remember about the important works of Edmund Spenser, Fairy Queen, The Shepherd's Calendar, Epithalamion, Amoretti. ठीक है उसके बाद what is a Spenserian stanza? इस पे direct सवाल आ चुके हैं इसलिए बार बार repeat कर रहा हूँ उससे पहले हमने क्या पढ़ा Philip Sidney. His important works, Arcadia, Astrophil and Stella, which is a sonnet sequence, and finally the Defense of Poesy, which we read in literary criticism. ठीक है